हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आशिका अभिमान के साथ कमरे में मौजूद थी। थोड़ी देर पहले आकाश ने उनके कमरे में आकर काफी हंगामा किया था और साथ ही उसने अभिमान को ये कहकर भी धमकाया था कि गलती से भी आशिका को हाथ तक न लगाए। आकाश यही चाहता था कि अभिमान और आशिका के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता न बने। आशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। इस बीच अभिमान कमरे में आया और उसने आशिका का नाम बुलाया, लेकिन आशिका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अभिमान ने जाकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया था। होश आने पर आशिका घबराकर कुछ कदम दूर हो गई थी। आशिका के दिमाग में बार बार आकाश के शब्द गूंज रहे थे, जब उसने कहा था कि उसे छूने का हक सिर्फ आकाश को है और वो उसी की है। अभिमान ने भी ये बातें सुनी थी और इस वक्त अभिमान को यही लग रहा था कि वो आकाश की वजह से काफी डर गई है। उसका चेहरा देखकर ये लग रहा था जैसे वो अभिमान के एक नॉर्मल से टच से भी इस तरह दूर हो गई, मानो वो उसके साथ क्या करने वाला हो। अभिमान ने अपनी मुठियां कसकर बंद की और आशिका से सख्त आवाज में बोला, तो उस घटिया इंसान की तरह कहीं तुम्हें भी ये लगता है कि। अभिमान बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात पूरी होने से पहले आशिका जल्दी से उसके पास आई और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे थोड़ा नीचे झुका दिया था। अभिमान कुछ समझ पाता उससे पहले आशिका के होंठ उसके होठों पर लगे हुए थे और वो आंखें बंद करके बस उसे किस करने में खोई हुई थीं। हालांकि अभिमान के लिए ये काफी सडन था, क्योंकि कुछ देर पहले उसके हाथ तक लगाने पर आशिका घबराकर पीछे हो गई थी और अब अचानक वो उसे जाकर किस कर रही थी। हालांकि अभिमान आशिका से प्यार करता था और उसकी करीबी उसे सुकून दे रही थी, पर आशिका के इरादे उसे समझ नहीं आए। वो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अभिमान ने आशिका का मुंह पकड़कर उसे खुद से दूर किया और हैरत भरे लहजे में बोला, ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? तुम्हें समझना सच में इम्पॉसिबल है ऐश, ना तो तुम्हारी फीलिंग्स मुझे समझ आती हैं और ना ही तुम्हारी हरकतें। आशिका ने गहरी सांस ली और अभिमान की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोली, वो डिसाइड करने वाला कोई नहीं है कि मुझे छूने का हक सिर्फ उसे है। अगर इस वजह से वो मेरे पीछे पड़ा है कि आज तक मैं कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई हूं, तो मैं वो वजह ही खत्म कर दूंगी। रियली? अभिमान भौंय उठाकर बोला, और तुम्हें क्या लगता है सच जानने के बाद मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है ऐश, और मुझे किसी के साथ ऐसे रिलेशन नहीं बनाने हैं जिसके दिल में मेरे लिए प्यार ना हो। तुम उस आदमी को गलत साबित करने के लिए मेरा यूज नहीं कर सकती हो। अभिमान ने आशिका के साथ रिश्ता बनाने से साफ मना कर दिया था। अगर वो प्यार से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए पूरे दिल से उसके करीब आती तो शायद अभिमान के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन और कोई नहीं होता। पर आकाश को चैलेंज करने के लिए वो उसके करीब आना चाहती थी और ये अभिमान को कभी गवारा नहीं था। वहीं आशिका के चेहरे पर इस वक्त चिढ़न भरे भाव थे। उसे अभिमान पर गुस्सा आता था जब वो उसकी बात मानने के बजाय बहस करने लगता था और वही करता था जो उसे सही लगता था। आशिका ने गहरी सांस ली और अभिमान के पास आकर उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभिमान राजवंश। थोड़ी देर पहले हमारी शादी हुई थी और पिछले 5 सालों से हम शादीशुदा हैं। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और एज वाइफ मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। तुम इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। आज हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है और तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आशिका की बात सुनकर अभिमान के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो बोला, तुम्हें खुद तक एहसास नहीं है कि तुम क्या करने का बोल रही हो। अगर एक पत्नी के तौर पर तुम्हारी कुछ डिमांड्स हैं तो एक हस्बैंड के तौर पर मेरी भी कुछ डिमांड्स हैं। वो पूरी करो, फिर ठीक है, मैं आ जाऊंगा पास। बोलो क्या करना है, आशिका ने सिर हिलाकर कहा। उसके हाँ कहते ही अभिमान के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी, तो वहीं आशिका चिढ़ते हुए उसे घूर कर देख रही थी। जहां आशिका आकाश को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, तो वहीं अभिमान के पास अच्छा मौका था जब वो अपनी बात उससे मनवा सकता था। अभिमान जिस तरह मुस्कुराते हुए आशिका को देख रहा था, आशिका को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बनी हुई थी। जल्दी बताओ तुम क्या चाहते हो, आशिका ने दांत पीसते हुए पूछा। उसकी आवाज से ही जाहिर हो रहा था कि वो कितनी झुंझलाई हुई है। सच, मुझे बस सच सुनना है कि तुम मुझे लेकर क्या फील करती हो, अभिमान ने आशिका के पास आते हुए कहा। अभिमान जाकर आशिका के बेहद करीब खड़ा हो गया था। आशिका की नजरें खुद ब खुद नीचे हो गई थीं। कुछ देर पहले अभिमान के पास आकर उसने किस तक कर दिया था, लेकिन तब उसके चेहरे पर किसी तरह के झिझक के भाव नहीं थे। लेकिन अब न जाने क्यों उसे अभिमान की करीबी इस तरह अजीब महसूस करवा रही थी। अभिमान ने आशिका का चेहरा पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे करीब आना इतना आसान नहीं है आशिका सिंघानिया। अगर पास रहना है तो साथ रहने का वादा करना होगा, प्रॉमिस करना होगा कभी डाइवोर्स नहीं दोगी। फिर तुम्हें इस तरह जबरदस्ती मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जब तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट करोगी तब ये दूरियां भी मिट जाएंगी। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आकाश राजवंश कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभिमान की बातें अगर कोई और लड़की सुनती तो वो काफी खुश होती और साथ ही उसके साथ उम्र भर रहने का वादा करती, लेकिन आशिका ने उसकी बातें सुनकर आइज रोल की। सच ए टाइम वेस्टर, आशिका ने सिर हिलाकर कहा, जिस पर अभिमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इससे पहले कि अभिमान कुछ समझ पाता, आशिका ने उसे बेड पर धकेला और खुद उसके ऊपर आकर लेट गई थी। वो अभिमान की आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए बोली, मैंने कहा मुझे उस इंसान के शब्दों से चिढ़ है जब वो कहता है कि वो पहला इंसान होगा जो मेरे करीब आएगा। मुझे अपने फैसले लेने का हक है और साथ ही ये डिसाइड करने का भी कि मुझे किसके क्लोज होना है। अब तुम मेरी बात मान रहे हो या गलत साबित करने के लिए मुझे किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि आखिरी लाइन आशिका ने सिर्फ अभिमान को धमकाने के लिए बोली थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस लाइन की वजह से वो दबाव में आने वाला है। अभिमान ने जल्दी से नामे सिर हिलाया, आशिका को कमर से पकड़कर बेड पर लेटा दिया था। अब वो उसके ऊपर आकर लेट गया था और वही कर रहा था जो आशिका चाहती थी। अभिमान आशिका से प्यार करता था और इस तरह उसके करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन आशिका की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। जहां आशिका को छूते हुए, उसे महसूस करते हुए अभिमान के दिल में एक अलग ही खुशी थी, तो वो अच्छे से जानता था कि फिलहाल आशिका के दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन हाँ वो उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी। आशिका की जिद के चलते ही सही, लेकिन अभिमान और आशिका के बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थीं। दूसरी तरफ रचित जानबूझकर अभिमान की शादी में नहीं गया था। वो जानता था कि अगर वो शादी में गया तो उसे आज अभिमान अपनी नज़रों से ही जिंदा चला देगा। वो अपने घर के बाहर एरिया में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी राघव वहां पर दाखिल हुआ। राघव को देखते ही रचित बोला, चलो शुक्र है तुमने दर्शन तो दिए, लेकिन प्लीज़ वही पुराना लेक्चर शुरू मत कर देना कि आज मेरी वजह से अभिमान की लाइफ बर्बाद हो गई। तुम लोग मेरे इंटेंशंस क्यों नहीं देखते? 5 साल पहले मैंने अभिमान की हेल्प करनी चाहिए थी। रचित राघव के ताने सुनने के लिए तैयार था, लेकिन उसने देखा राघव मुस्कुरा रहा था। वो रचित के करीब आया और उसके गले लग गया था। रचित को तो मानो उसके ऐसा करने पर एक झटका सा लगा।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? गले लगाने की तो दूर की बात है, तुम लोग तो मेरा गला दबाने पर तुले रहते हो। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? रचित हैरानी से डोला और उसने राघव को खुद से दूर किया। कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि हकीकत है, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो क्या अभिमन्यु ने उस लड़की से शादी नहीं की, तभी तुम लोग मेरी तारीफ कर रहे हो? रचित उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला। बिल्कुल नहीं, जिसकी शादी तुमने अभिमान के साथ रजिस्टर करवाई थी उसी लड़की से उसकी शादी हुई है, लेकिन वो लड़की आशी नहीं बल्कि हमारी ऐश है। तुम जानते हो ऐश का पूरा नाम आशिका सिंघानिया है? जैसे ही राघव ने बताया, रचित को सच में झटका सा लगा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं और उसे सच में राघव की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यकीन दिलाने के लिए राघव ने अपना मोबाइल निकाला और शादी के कुछ फोटोज़ रचित को दिखाए। इस लड़के की तो सच में लॉटरी लग गई, वो भी मेरी वजह से। अब तक मुझे ताने मारकर मेरा जीना हराम करके रखता था। कल उसे ऑफिस आने दो, फिर मैं देखता हूँ। एक एक बात का चुन चुन कर बदला लूंगा। उसे डाइवोर्स चाहिए था ना अपनी वाइफ से, अब मैं डाइवोर्स दिलवाऊंगा उसे, रचित ने हंसते हुए कहा। अभिमान ने कभी उन दोनों के सामने खुलकर ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो आशिका को पसंद करता है, लेकिन वे दोनों उसके दोस्त थे। जिस तरह से वो आशिका को देखता था और प्रोटेक्ट करता था, उससे उन दोनों को पहले से ही इस बात का पता था, वो ऐश को पसंद करता है, रचित और राघव एक साथ बोले और फिर हंसने लगे थे। रचित ने सिर हिलाकर कहा, सच कहूँ तो आज दिल पर से एक बड़ा सा बोझ उतर गया। जब भी अभिमान को उस लड़की को देखकर इरिटेट होते देखता था तो मुझे खुद पर गुस्सा आता था। वो सच में हमारे अभिमान के लायक नहीं थी। सही कहा, वैसे मानना पड़ेगा उन दोनों को मिलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। पहले अनजाने में ही सही, लेकिन उन दोनों की शादी करवाना और बाद में ऐश से कॉन्टैक्ट करके उसे हमारे साथ काम करने के लिए मनाना, राघव ने रचित का कंधा थपथपाते हुए कहा। ये पहली बार था जब रचित की तारीफ हो रही थी। बिल्कुल, मैंने जो किया है उसके बाद तो अभिमान को मेरा एक मंदिर बनाकर मेरी पूजा करनी चाहिए, रचित ने जवाब दिया। फिर वो मुँह बनाकर बोला, शिट यार, मुझे ये शादी अटेंड करनी चाहिए थी और सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता तो ज़्यादा मज़ा आता। थैंक गॉड तुम शादी में नहीं आए, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला था क्योंकि मिस्टर अभिमन्यु राजवंश ने पूरी शादी के मेहमानों को गन पॉइंट पर ले रखा था, राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके बाद वे दोनों इधर उधर की बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ रात के लगभग 4 के करीब अभिमान और आशिका एक दूसरे से दूर दूर सोए हुए थे। वे दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे और थोड़ी देर पहले आशिका की मन की इच्छा भी अभिमान ने पूरी कर दी थी, फिर भी वो एक दूसरे के लिए अनजान से थे। आशिका बिना किसी भाव के छत की सीलिंग की तरफ देख रही थी, जबकि अभिमान की नज़र उसके ऊपर थी। रोबोट, कोई इतना इमोशनलेस कैसे हो सकता है? इसे मुझे हक करके सोना चाहिए, लेकिन हाथ तक नहीं लगाने दे रही और थोड़ी देर पहले ज़बरदस्ती कर रही थी, अभिमान ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। हद तो तब हो गई थी जब आशिका ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली थी। अभिमान भी कुछ नहीं बोला और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा।
अगली सुबह अभिमान जब उठा तब आशिका ब्लैंकेट में सिमट कर बैठी हुई थी। वो जाग चुकी थी लेकिन उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और कल रात जो उसने पहना था वो दूर फर्श पर गिरा हुआ था। अभिमान जब तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकला तो आशिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसकी नज़रों को समझते हुए अभिमान ने कंधे उचकाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े कहाँ से लाऊं? तुम्हारा वैसे भी कोई खास स्टाइल नहीं है, मेरा शर्ट पहन लो ना। हाँ चलेगा, लेकिन लाकर तो दो, आशिका बोली। अभिमान उसके लिए अपने वार्डरोब से शर्ट लाने जा रहा था तभी उनके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज हुई। एक पल के लिए अभिमान और आशिका दोनों को यही लगा कि दरवाजे पर आकाश आया होगा। आशिका खुद ब खुद लेटकर ब्लैंकेट में सिमट गई थी तो वहीं अभिमान ने दरवाजा खोला तो सामने वेदांत खड़ा हुआ था, उसका कजिन ब्रदर। कॉन्ग्रेचुलेशन लिटिल ब्रो, मैंने सुना कल तुम्हारी शादी हो गई, दुल्हन भी बदल गई है, सोचा अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लेता चलूं, वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमान ने उसे देखकर सिर हिलाया और जवाब में बोला, मेरी शादी के रिचुअल्स पिछले 2-3 दिनों से चल रहे हैं, तुम्हें होश भी है या नहीं? हाँ मुझे भी लग रहा है कल कुछ हार्ट चढ़ा लिया था, मैं यहाँ ड्रग्स के नशे में डूबा रहता हूँ और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। वैसे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे मुझे? वेदांत ने सिर हिलाकर कहा। उसकी अजीब हरकतें और इस तरह शराब और ड्रग्स के नशे में डूबे रहने की वजह से पूरी राजवंश फैमिली उससे परेशान थी। वो सो रही है, वन मोर थिंग, इस तरह खुलेआम कौन बोलता है कि वो ड्रग्स के नशे में डूबा रहता है, पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, अभिमान तंज भरे लहजे में बोला। पुलिस रिश्वत ले रही है पता नहीं क्या, हम राजवंश फैमिली हैं और हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी ये स्ट्रेस भरी जिंदगी बिताना बंद करो, बिजनेस हमारे बड़े संभाल लेंगे, हम एंजॉय करते हैं ब्रो, वेदांत अभिमान के कंधे को पकड़कर बोला। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभिमान ने उसे फिर से बाहर की तरफ धकेल दिया था। उसने थैंक्स कहा और वेदांत की गिफ्ट की हुई ड्रेस ले ली थी, वैसे भी आशिका को ड्रेस की जरूरत थी। वेदांत से बाद में मिलने का बोलकर अभिमान ने उसे भगा दिया था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और आशिका की तरफ बैग फेंकते हुए बोला, वैसे तो ये इंसान पूरी तरह यूजलेस है लेकिन आज इसने पहली बार कोई ढंग का काम किया है, बैग देखकर लग रहा है इसमें 2-3 जोड़ी कपड़े तो आराम से होंगे, कुछ ना कुछ तो काम का होगा ही, ट्राई कर लेना। अभिमान के कहने पर आशिका ब्लैंकेट से बाहर निकली और कपड़े खोलकर देखने लगी, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने कपड़े देखे वो दोनों कभी कपड़ों को घूर रहे थे तो कभी एक दूसरे को। शायद वेदांत हमेशा यूजलेस ही रहेगा, अभिमान ने झुंझलाकर गहरी सांस लेकर कहा।